कल आत्मख्याति टीका पढ़ी थी अपन ने 142वीं गाथा की। अब अपन उसके उसके बाद में जो अपन ने कमेंट किया है वो पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। पेज नंबर 228 नीचे की दो पंक्तियां। गाथा में तो मात्र दो नए पक्षों की ही चर्चा है, किंतु टीका में तीसरे प्रमाण पक्ष को भी रखा गया है, है ना? जिसमें कहा गया है कि जो ऐसा विकल्प करता है कि आत्मा बद्ध भी है और अबद्ध भी है, वह भी विकल्प का अतिक्रमण नहीं करता, है ना? प्रमाण माने जो दोनों को एक साथ बोलता है ना, जिसमें भी लगती है, किसी अपेक्षा करता भी है किसी अपेक्षा करता नहीं है। इस प्रकार इसमें न्याय और प्रमाण दोनों के पक्ष का निषेध किया है। कहा गया है कि वस्तु न्यायातीत ही नहीं प्रमाणातीत भी है, नए पक्ष के विकल्प से भी पार है और प्रमाण के विकल्प से भी पार है, सब प्रकार के विकल्पों से पार है। मैंने विशेष ध्यान दिला रहे, अपन को पूरे 20 कलश बोलते हैं ना, तो उसमें वही वही आता है, एक नए ऐसा कहता एक नए ऐसा कहता और वस्तु तो ऐसी है। तो ये तीसरी जो बात आती है ना बीच में, वो हमारे दिमाग में से रह जाती है। जो अभी आपको शायद 13वीं गाथा है पढ़ा रहे ना, 12वीं 13वीं जो भी, उसमें भी टीका में प्रमाण में निक्षेप डाले, मूल गाथा में नहीं है ना। भूयत्थेणा भी गदा जीवा जीवाय पुण्य पावन च आश्रय बंध संवर बंधु मुखु सम्मतम। तो सात तत्व की बात तो यही है, पर तो सात तत्वों में छुपी हुई आत्मज्योति की बात है। पर तो प्रमाण नय की चर्चा टीकाकार ने अपनी तरफ से दी, और मेरे ख्याल से पहले कलश में दी और बाद में टीका में, कलश बाद में दिया, उन्हें टीका में पहले ले लिया उसको प्रमाण नय निक्षेप, और फिर बाद में वो कलश लिया कि न उदेति नय श्री अस्तमेति प्रमाणम। ये कलश शायद चौथा ही कलश है, नौवां कलश है। तो वो पहले जो चौथा कलश आया था ना, वो भी 12वीं के बाद में इसी टाइप का था, समझे ना? और इसमें फिर उन्होंने ये बात टीकाकार ने अपनी तरफ से जोड़ी, और फिर बनारसी दास ने नाटक समय सार में इसमें जो लिखा ना, प्रमाण को न परवेश नय को न लेश निक्षेप को वंश विध्वंस हो जाते है। ये बनारसी दास की विशेषता है, प्रमाण का प्रवेश ही नहीं है, नय का लेश मात्र भी नहीं है, और निक्षेप का वंश पूरा वंश, मान जितने भी प्रकार के निक्षेप हों उनको विध्वंस हो जाते, बिल्कुल साफ हो जाता है, है ना? वास्तव में असली बात तो विकल्प का नाश हो जाता है, और जो जो विकल्प वहां संभव है उन सब का उन्होंने गिना दिया। और दुनियादारी के विकल्पों की बात क्यों करें हम, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं पूजन के संदर्भ में ये बात कहता हूं कि जब आप पूजन के पहले बोलते हैं पुण्यम समग्र महमेक मना जो हूं भी, कि मैं सारे पुण्य को एक मन से होमता हूं, यहां नहीं लगाते हैं कि भूतकाल का भविष्य काल का वर्तमान काल का, और जब पाप के नाश की बात करते हैं ना तो हम सब लगा लेते हैं, सब पाप के नाश में, क्योंकि समग्र पुण्य हम तो अब पाप नाश करने आए थे और पुण्य कमाने आए थे, तो यही तो वो कह रहे हैं ना कि तुमने मुंह से तो ऐसा बोला है है ना, क्या कहने सारे पुण्य को केवल ज्ञान की बन्नी में होमता हूँ, स्वाहा करता हूँ, नाश करता हूँ। क्या तो तुम नहीं जानते हो कि इस शुभ भाव से तुम्हें पुण्य ही बनेगा, तो करते ही क्यों हो कि हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। बहुत स्पष्ट शब्दों में पंचाष्टी काय में लिखा है, जो टुंडमल जी ने कोट किया है, कि अशुभ भाव से बचने के लिए और अस्थान में राग न जाए उसके निषेध के लिए हम आए हैं। क्या हमें पुण्य कमाने नहीं आए हैं। अब ये बात पूजा में लिखी है, लेकिन पूजा कराने वाले कोई पंडित बताते नहीं और किसी को सुनना नहीं, क्योंकि सबको तो पुण्य ही कमाना है। अब तो हमारी टोन भी ऐसी हो गई है, बहुत पुण्य लाभ होगा, बहुत पुण्य लाभ मिलेगा। महिलाओं को भड़काते हैं कि भाई पति देगा तो उसका पुण्य पति को मिलेगा, तुम्हें थोड़ी मिलेगा, इसलिए तुम पति की जेब में से चोरी कर करा करके लाओ और दे दो। ये पुण्य का उपदेश है या पाप का उपदेश है? ऐसी भेद नीति डालने से क्या फायदा है? बच्चे को अलग देना चाहिए, बाप को अलग देना चाहिए, बच्चे का पुण्य बच्चे को लगेगा, बाप का पुण्य बाप को लगेगा। ये क्यों बात करते, सीधी कहो ना कि एक जने दो सब अनुमोदना करो। अपने यहां तो कृतकायत अनुमोदना का सबका एक सही फल है ना। आपके चित्त में विरोध का भाव नहीं आया, तो हमेशा यही निकला कि अच्छा किया, कि मैं आज 1,00,000 रुपया बोले आया कि अच्छा किया, तो हो गया, हो जाएगा तुम्हारा काम पूरा। तुम तो 1,00,000 का कमा लिया, अरे 25-25 लाख अपने चारों जने दे देते, 25,000 तुम दे देते, 25 मैं, 25 दो एक बच्चा दूसरे बच्चे के नाम, क्यों तो चारों को पुण्य मिल जाता। कि मिल तो जाता लेकिन वो 25-25 हजार का मिलता ना, तो पुण्य तोल तोल के मिलता हो। ये 25,000 का ही भाव हो, पुण्य का कोई भाव हो, क्यों जगत की जो हालत है वो तो जगत जाने, लेकिन अब हमारे लोग जिनको पूरी तरह पता है, गुरुदेव 45 साल तक बोल बोल के गए हैं, और अब अपने यहां भी निरंतर उसी की अपन बात करते हैं, क्यों तो वहां भी लोग तो प्रेरणा देने के लिए उन्हें पास और तर्क नहीं है, और बुद्धि नहीं है, और विवेक नहीं है। क्यों कि भाई आज ये विद्यार्थी पढ़ेंगे तो ये बहुत विद्वान बनेंगे, तो ये धर्म आगे बढ़ेगा, लोगों को तत्व समझने को मिलेगा और उनका भी कल्याण होगा। ये तर्क कम है, क्यों समझी ये प्रेरणा देने के लिए ये तर्क कम है क्या है? कि तुम तो हमें ये बताओ कि हमें पुण्य बंधेगा नहीं मिलेगा, क्या बात करते हो? ये इतना बढ़िया धर्म के प्रचार का तुम्हारा भाव है तो क्यों नहीं बनेगा? लेकिन भैया कि तुमने ये जो भाव किया ना बांधने का, तो वो पुण्य थोड़ा हीन हो जाएगा, और ज्यादा इससे चेते तो वो बनेगा ही नहीं, और ज्यादा उसके पीछे पड़े तो पाप बनेगा। ये वस्तु का स्वरूप है ना शांतिलाल जी, ये बताओ ना कि साहब फिर तो कोई देगा नहीं, नहीं देगा तो नहीं देगा, अपने बाप का क्या बिगड़ता है? थोड़ा कम धर्म का प्रचार होगा, दो कमरे कम बनेंगे, बोल बताओ। लेकिन हम गलत मार्ग पे कैसे जाएं और कैसे ले जाएं जगत को? वास्तव में हमें उनका चाहिए ही नहीं, क्या हमें तो उनका ही चाहिए जिनको ये तत्व ज्ञान अत्यंत प्रिय लगता है, क्या और इसके प्रचार प्रसार में वो भी शामिल होना चाहते हैं, एक आहुति वो भी देना चाहते हैं बिना किसी कामना के, समझे ना। और जितने विद्यार्थियों के पढ़ने की योग्यता होगी तो उतनी सब व्यवस्था होगी, बिल्कुल ऑटोमेटिक, विकल्प करने की भी जरूरत नहीं है, वस्तु स्थिति ऐसी है। क्या ये धर्म के दर्शन किताब में मैंने लिखा सब कब 74 में, कि एक तुम कहते हो ऐसा कहोगे तो लोग दान देना कम बंद कर देंगे, संस्थाएं बंद हो जाएंगी, कि हो जाए ना, ऐसा लिखा पहले। फिर लिखा है तुम्हारा बहुत बड़ा, तुम धोखे में हो, ये दान तो दिन दूना रात चौगना देंगे और चौगनी संस्थाएं चलेंगी, तुम चिंता मत करो। गुरुदेव श्री ये फरमाते थे कि नहीं फरमाते थे? और वो दिन रात सेठियों की पिटाई करते थे क्यों, और दान दोगे तो धर्म नहीं होगा ऐसा बोलते थे, और वहां पांच मिनट में बरसता था, और तुम मक्खन लगा लगा करके ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, जे हो वो ऐसा, बड़े सो पावे बड़े सो पावे, चिल्लाते चिल्लाते भैया मेरा गला खराब हो गया, थोड़ी दया तो करो, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं स्टेज पे स्पीकर पे। तो अब क्या बात आई इसमें, एक बात जो गाथा में नहीं थी और टीका में आई है, क्या है? प्रमाण, कि प्रमाण संबंधी विकल्प रहेगा तो भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अब और दूसरा पॉइंट, अब पेज नंबर 229 पर सेकंड पैरा, यहां एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि गाथा और टीका में जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग है कि जीव कर्म, जीव में कर्म बद्ध है या अबद्ध है, परंतु जैतन जी के भावार्थ में ऐसा लिखा है कि जीव कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है। अभी अंतर देखा आपने, जीवे कम मम बद्धम, है ना, क्या है भाषा कैसी है, कि जीव में कर्म बद्ध है, जीवे कम मम बद्धम है क्या नहीं है? हिंदी अमितन टीका में भी ऐसा ही है, और यहां कह रहे जीव कर्मों से बंधा है कि नहीं बंधा है, ये अंतर हम कह रहे कोई अंतर नहीं है, लेकिन भाषा में अंतर आया तो वो हमारे ध्यान में आना चाहिए ना, यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो, लेकिन हमें तो उसमें कोई फर्क ही नजर नहीं आता। हम भी दिन में तीन दफे बोले जीव में कर्म बंधा है, उसी में तीन दफे बोल दें कि समझे जो दूसरी भाषा है ना, कि कर्म बंधे हैं, तो आपको पता ही नहीं रहेगा ना कोई फर्क किया है, इसलिए ये खोल खोल के लिखा है। जैतन जी के भावार्थ में ऐसा लिखा है कि जीव कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है। वर्तमान में समय सार पर प्रवर्तन करने वाले सभी प्रवक्ता भी जैतन जी के अनुकरण पर जीव कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है भाषा का ही प्रयोग करते हैं। माने वो मूल गई कुंड की और अमृतचंद की, और जैतन तो ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें ये कभी सोचा ही नहीं, तुम जबरदस्ती आरोप लगा रहे, वे तो प्राकृत संस्कृत तो पढ़ते ही नहीं, उनकी समझ में आते ही नहीं, उन्हें तो जो हिंदी में लिखा है आप समझे ना, वे उसी को पढ़ते हैं और वही कहते हैं, सीधी सच्ची बात है। तो जैतन छाबड़ा पे आप आरोप, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पराधीन ज्यादा काम नहीं चलेगा। कभी कभी मैं ये कहता हूं कि वो बच्चा कितना अभागा है जिसे अपनी मां से दुभाषिया के माध्यम से बात करनी पड़ती है। तो आप सोचो अपने अपने में, क्या आप अपनी मां से बात करो, मान लो मां मराठी जानती है शांतिलाल जी बिल्कुल, और आप बिल्कुल मराठी भूल जाएं यहां से, फिर एक दुभाषिया को बीच में रखें जो हिंदी और मराठी दोनों जानता हो, फिर आप कहें वो अनुवाद करके मां को बताए, फिर मां जवाब दे, फिर वो अनुवाद करके आपको बताए, तो आप कितने भाग्य होगा महा अभाग्य। तो जिनवानी भी अपनी मां है ना, और उससे भी हमें बात करना है तो ये बीच में पंडित रूपी दुभाषियों की जरूरत क्या है? वो पंडित में अकेले जैतन छाबड़ा नहीं, हुकुमचंद भी सामने, ऐसा मैं समझ लेना कि मैं क्या कह रहा हूं। हमको उनकी भाषा क्या तो सीखना चाहिए ना, कि जिसे हम उनकी भाषा में सीधा समझ सकें। इतनी आपकी अच्छी संस्कृत नहीं हो तो चलेगा कि आप सीधा न समझ सकें और नीचे देखने की आपको जरूरत पड़े तो भी इतना तो समझ सकें कि जे इसमें लिखा है कि जीवे कम्बम बद्धम, और यहां अनुवाद किया है कि जीव कर्मों से बंधा है। क्या बोली समझ आई ना? इतनी तो चाहिए। एक सही घटना बताता हूं मैं, बहुत पुरानी है, करीब 40 वर्ष हो गए होंगे। मैं यहां आया ही था तो एक अंग्रेज महिला आई इंग्लैंड से, और वो महारानी गायत्री बाई थी ना, वो उनकी मेहमान थी, तो उन्हीं के साथ उन्हीं के बंगले में ठहरी हुई थी। और वो वर्क जयपुर के राजाओं पर वो वर्क कर रही थी, तो वो उनको आके के काम करती थी। और वो उसे पूछती थी, यहाँ के राजा बहुत लोकप्रिय थे, जनता की बहुत सेवा करते थे, बहुत बहुत बातें वो उन्हें बताते थे। अब वो कहते थे मुझे यहाँ सब लोगों से मिलना है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों से, विद्वानों से, जैनियों से, अजैनियों से, ब्राह्मण सबसे, उनके प्रति उनका मुसलमानों से, के ये वो जानती थी कि मैं इनकी मेहमान हूं, मुझे कह रही क्योंकि इनके परिवार का है मामला, तो वो तो रिसर्च के लिए आई थी ना। तो मैं सबसे जानना चाहती हूं कि वास्तव में स्थिति क्या थी, ये रिसर्च करने आई थी। तो मेरे जैन समाज की तरफ से मेरे को याद किया गया, तो मैंने कहा ले आओ यहां। गणेश साहब वो वहां नहीं आ सकती हैं, जो है वो है वो है क्या। अब मैंने कहा भाई मैं तो कहीं जाता नहीं हूं। बोले नहीं नहीं, आपको गाड़ी पहुंच जाएगी, ले आएगी, फिर गाड़ी आपको छोड़ के आएगी। हमारे पास गाड़ी आई उनकी, भनानी गायत्री देवी की, और हम गए यहां से। और वहां ये अपना ये आजकल होटल है, राजमहल है, यहां पर रहती थी ना, यहां पर स्टेशन के रस्ते में जाते हैं, वहां बहुत बड़ा वो है उनका, उसमें हम लोग इकट्ठे घूमने मिले। अब मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं अंग्रेजी नहीं समझता हूं, तो दुभाषिये की व्यवस्था करना। तो उस वक्त केवल चंद जी ढोलिया के भाई कोई अनूपचंद ढोलिया थे ना, अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो उनके यहां काम करते थे किसी महारानी के यहां, और उनको दुभाषिया के रूप में वो लाए। अब हमारी बातचीत शुरू हुई, तो वो जो प्रश्न करे और मैं जो जवाब दूं, तो वो उसका सही अनुवाद करके नहीं बताएं, उल्टा बताएं। अब क्यों कि वो कहें कि यहां राजा इतने लोकप्रिय थे, कैसे थे, क्या है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, सभी राजा थे, कुछ अच्छे थे, जयसिंह जी वगैरह, लेकिन माधो सिंह के काल में जैनियों पर बहुत अत्याचार हुए और पंडित टोडामल जी की हत्या उनने कराई, लेकिन वो बतावे ही नहीं उसे। अब तुम समझेगा नहीं, जो मैं उसे बताऊं वो बतावे नहीं, वो क्या ऐसा ऐसा। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, इतना सही है, लेकिन आप अनुवाद सही नहीं कर रहे, इतनी अंग्रेजी मुझे आती है। आप ये बताइए, ये बताइए। लेकिन वो तो कैसे बता सकते थे, क्योंकि वो तो उनके नुमकर थे। तो मैंने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे बताने की कोशिश करी, वो वह कन्फ्यूजन खड़ा हुआ। खैर जो भी उसने लिखा हो, जो भी समझाया हो, तो मैं आपसे उस ध्यान से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई दूसरा ये गाथा का अर्थ ये है और एक टीका में ये है, तो आप मूल टीका देख के भी तो जान सके जयतन जी की बात नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको समय साल की गाथा और टीकाओं का गलत अर्थ बताएंगे, सामने वाले हैं कि नहीं है। तो कम से कम हम अपने कॉन्फिडेंस के लिए खुद इतना तो जान सकेंगे जो ये कह रहा है वो इसका अर्थ है कि नहीं। इतनी मातृभाषा तो हमको आंदे, मातृभाषा माने संस्कृत प्राकृत मातृभाषा है। अरे भाई हमारी जिनवाणी माता है, यदि हमारी जिनवाणी माता है तो हमारी मातृभाषा नहीं हुई। मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हमारे स्वाध्यायी ताराचंद जी समझना, मैं क्या कहें,
ये ऊपर को देखते ही नहीं है, ये समझना है। ऊपर को नहीं देखते का मतलब समझना है, देखो ये है ना, इधर से ऊपर संस्कृत है, प्राकृत है, नीचे हिंदी है, इनकी गर्दन ऊपर को उठती ही नहीं है, ये गाथा की तरफ देखते ही नहीं है, ये टीका की तरफ देखते ही नहीं है, वो नीचे जो हिंदी है पर उसके वो लैन के नीचे जो है समझ गए, पर उसको ही पढ़ते हैं। अरे नहीं आए समझ में तो भी पढ़ो, ये तुम भनते भनते पढ़ते हो ना, सिंधे 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 तो वह अर्थ समझ में आता है, अभी पढ़ते हो ना, अपवित्र पवित्र हुआ पढ़ते हो तो अर्थ समझ में आता है, श्रीमद जिनेन्द्र भविवंदन अजेंद्र बंदन पढ़ते हो तो अर्थ समझ में आता है, फिर भी पढ़ते हो ना, क्योंकि उसमें तो पुण्य टपकता है। भक्तांबर का अर्थ समझ में नहीं आता, फिर भी भक्तांबर पढ़ते हो गए नहीं, तो इसको भी पढ़ो, विद्यार्थियों को तो अनिवार्य है पंक्ति पंक्ति से उसका अर्थ समझना। प्रशांति जी इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उतना मैं भी नहीं पढ़ा सकता, एक एक पंक्ति से संधि से निकाल निकाल के आपको बताते हैं, ये ऐसा भाग्य तुम्हारे जीवन में द्वारा नहीं मिलेगा, समझा। उनकी तो ड्यूटी है अक्षर अक्षर से पढ़ने की, मैं भी पढ़ता हूं समझ लो उनसे, पूरी क्लास सुनता हूं मैं, जबकि मैंने समय सारी अनुशीलन लगा और टीका भी कर दी और ये सब किया, उसके बाद भी मुझे सुनने में आनंद आता है, मुझे बोझा नहीं लगता है। क्या ये जनवाणी माता अपनी माता की बातें हैं, अपनी माँ जो अपन से बात करे उसमें भी उपकारी छूटे क्यों, अभी भी हम सब बड़े बड़े पंडित हो गए हिंदी के अंग्रेजी के संस्कृत के, अब वो माँ गुजराती में बोलती है, मारवाड़ी में बोलती है, बुंदेलखंडी में बोलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि कहां की जाएगी, बिना पढ़ी लिखी गमार, मैं इसे मान ही मानूंगा, आज तक किसी ने विकल्प किया बोलो है? नहीं किया ना, नहीं करना चाहिए ना, तो ऐसी इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे उत्तर क्या आएगा उसकी अभी छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अंतर है वो देखो। यहां एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि गाथा और टीका में जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग है कि जीव में कर्मबद्ध हैं या अबद्ध हैं, परंतु जैतन जी छाबड़ा के भावार्थ में ऐसा लिखा है कि जीव कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है। वर्तमान में समय सार पर प्रवचन करने वाले सभी प्रवक्ता भी पंडित जैतन जी के अनुकरण पर जीव कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है भाषा का ही प्रयोग करते हैं, यद्यपि दोनों के भाव में कोई अंतर नहीं है, तथापि गाथा और टीका की भाषा ही अधिक उपयुक्त लगती है, क्योंकि उसमें भगवान आत्मा की प्रधानता भाषित होती है कि जीव में कर्म आके बंधे हैं, जीव जाके उनमें नहीं बंधा है, समझ गया ना। मैं बहुत बड़ा फर्क हो गया हो ऐसा मैं नहीं जानता हूं, अभी मैंने देखा नहीं है उस वक्त, लेकिन अब ये देखना चाहिए कि पंडित जैतन जी की जो मूल भाषा है उसमें क्या है, कहीं ये अनुवाद में ये नहीं हो गया हो क्या, आप समझे। ये जो अपने सामने अनुवाद आया है वो तीन चार टेढ़ों में टेढ़ होकर के आया है, पहले हिम्मत भाई ने जैतन जी छाबड़ा जी से गुजराती में किया, फिर मैंने उन्होंने सीधी आत्मख्याति सीधी संस्कृत से नहीं किया, और वहां ऐसी प्रवृत्ति थी कि मक्खी की मक्खी मार दो, आप जरा भी वाक्य बहिया कर दो तो वो नहीं 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 हम बहुत भोगा हैं। फिर उसका पंडित परमेश्वरी दास जी ने हिंदी में अनुवाद किया, और पंडित परमेश्वरी दास जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे लेकिन अध्यात्म का रस बिल्कुल नहीं था, इसलिए वे अध्यात्म की कितनी गहरी बातें पकड़ सकते थे। तो वो एक भाषा तीन चार जगह बदल के आए तो उसकी क्या हालत हो जाती है आपको पता नहीं। वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया है, क्या किया देखो, कि एक 10 आदमी खड़े किए और एक के कान में एक वाक्य बोला, फिर उससे कहा तुम दूसरे से कह दो, फिर उससे कहा तुम तीसरे से कह दो कान में, और कहते कहते 10 में से कहलाया, कहा तुम लिख के दो, उसमें लिख के दिया तो वो बिल्कुल बदल गया था। क्या फिर उन्होंने दूसरा किया प्रयोग कि हरेक के हाथ में वो जो लिखा बोला वो पर्चा दिया, तो एक सही लिखा और फिर कहा तुम इसके कान में बोलो, उसके कान में बोलो, और तुमने कहा तुम सुनो भी और देखो भी, तो फिर बाद में जब अंतम वाले से बोला तो बिल्कुल शुद्ध आया। समझ ना, अकेले सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनने के साथ पढ़ना बदल जाएगा मामला। ये प्रयोग किया था वैज्ञानिकों ने, ये कानों कानों बात जो चलती है, क्योंकि हर एक आदमी की इतनी स्मृति तेज नहीं है और वो उसके प्रति इतना सेंसिटिव भी नहीं है, है? इसलिए अपन को स्वाध्याय खुद करना चाहिए, आचार्यों की भाषा भी पढ़नी चाहिए, और विद्यार्थियों को तो अनिवार्य है, बाकी के लोगों को भी। अच्छा, गाथा में प्रतिपादित संपूर्ण विषय वस्तु का प्रतिपादन करते हुए स्वामी जी ने जो प्रकाश डाला है उसमें कुछ ध्यान देने योग्य तथ्य इस प्रकार हैं। अब स्वामी जी ने भी उसने अपनी विशेष बातें ध्यान देने लायक बताई, प्रचंद तो उन्होंने बहुत किया होगा, 10-20 पेज एक गाथा पे 2-3 दिन करते थे, और यदि हूबहू लिखें तो आप जानते हैं हम रेडियो स्टेशन में व्याख्यान देने जाते थे तो 10 मिनट बोलना पड़ता था, तो 10 मिनट बोलने में फुल स्क्रिप्ट टाइप किए हुए 6 पेज लगते थे। ये जो तीर्थंकर भगवान महावीर किताब है छोटी वाली 16 पेज की, वो सिर्फ मेरा रेडियो का 10 मिनट का भाषण है, वो तो हो सकता है उसमें बाद में थोड़े करेक्शन किए होंगे, विशेष बातें जोड़ दी होंगी, समझ गए ना, लेकिन वो मूल कल मतलब उसको आज भी पढ़ोगे आप तो 20 मिनट में पढ़ लोगे, अच्छा पढ़ने वाला होगा तो बहुत से बहुत 8 घंटा लगेगा। कल हमारे ऑफिस में एक पत्र आया कि मैंने समय का मोक्ष मार्ग का समय सार का समय क्या लिखा, समय सार का अनुशीलन पढ़ा और फिर मैंने वो व्याख्यान सुने तब मेरी समझ में आया। तो ये सब ऑफिस वाले कहते हैं ऐसा कैसे हो, उस वक्त लिखे में तो बहुत ज्यादा व्यवस्थित आया है, अब बहुत बढ़िया आया है, इसको सुनने से जो समझ में आया, मैं पढ़ा फिर सुना फिर पढ़ा फिर सुना, और मेरे को 1000 वो सीडी 215 घंटा की थी हुई उसके पास, वो मुझे बांटनी है सब लोगों को, इसलिए आप तैयार करा दीजिए, मैं मेरी तरफ से बंटवाने की व्यवस्था करिए। ये मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लिख दिया तो बेकार, मुझे मालूम है कि इसमें उसमें क्या अंतर है, क्योंकि वो मैंने उसको पहले टाइप कराया तो वो टाइप 26 पेज में होता है मेरा 1 घंटे का, अभी रखे मेरे पास सब उठा के देखना मेरी डोज में यहां पर, और फिर मैंने उसे 16 पेज में कवर किया तो 10 पेज तो छूटे हैं ना। ये रिपीट लगता है, इसकी जरूरत नहीं है, लिखने में बहुत व्यवस्थित करते हैं तब वो ये ऐसा होता है, तो वो जो छूट गई चीज वो उदाहरण ही छूटे होंगे, सिद्धांत तो छूटते नहीं है, तो उन उदाहरणों से बात उसे स्पष्ट होती है, क्या करें। अन्ना जी ने मेरे देरू कहा कि आप तो बहुत कार्य दिया। मैंने भैया लिखने में तो ऐसा ही आएगा, ये ऐसा नहीं है, ये कूड़ा करकट नहीं जा सकता है। यदि ये ऐसे ही जाना होता तो फिर कोई भी लिख देता उसे तुम लिखवा करके और छपा देते। मेरे पास आएगा तो इसकी पूरी पोस्टमार्टम होगी। मैं सिर्फ एक कह रहा हूं कि इतना टाइम लगता है, सिर्फ इतना मैटर जाता है एक घंटे में। गुरुदेव जी को भी अक्षर लिखा ना, आप देख लेना एक घंटे के प्रतन में। वो आपके पास किताब है ना, कौन सी तो उसमें जो कितना पेज है उसी एक घंटे के प्रवचन का मैं चार पेज में लिखूंगा। आप मुझे डंडा मारेंगे तो भी मैं इससे बढ़ाऊंगा नहीं। और वो पेज कितने, क्यों रिपीटेशन बहुत होता है। एक बात चार दफे तो गारंटी से आती है, क्यों कि उनकी यह आदत है कि वो पहले उसको पढ़ते हैं। तो वो भी आ गया ना स्पीकर में, कैसेट में आ गई ना, फिर वो अर्थ करते हैं, फिर अर्थ किया, फिर बाद में पढ़ते हैं। तो अर्थ करने में आ गई, फिर द्वारा पढ़ी तो फिर आ गई, फिर अपने वही की वही लिख दी। समझ में आया क्या? अरे उन्हें तीन दफे पढ़ ली तो तीन दफे तो उनकी बाबू आ जाएगी, और जो उन्होंने व्याख्या करी वो भी आ जाएगी। फिर वे कहेंगे शेष कल, और फिर दूसरे दिन आएंगे तो फिर रिपीट करेंगे। आप समझ गए ना, तो उसमें ऐसा होता है। जब ये प्रवचन रत्नाकर का अनुवाद बड़े दादा ने शुरू किया तो इनने पहले ही यह शर्त रख दी थी कि यदि हुकुमचंद ने इसका संपादन स्वीकार करें तो ही मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्या है, मैंने कहा ऐसी क्या जरूरत है, तू ही देखना होगा वैसे ही देख लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये करने में दिक्कत नहीं है। अब मैं भाषा सर, लेकिन ये देखकर बाद में जो झगड़ा करने वाले हैं लोग, उनसे निमटने की ताकत मेरे में नहीं है। वो तुम्हारे बस की काम है क्या, मैं तो कह दूंगा उनसे कहो। और ऐसा हुआ, कृष्ण रत्नाकर भाग एक छपा तो शशि भाई और हीरा लाल काला झंडा लेके खड़े हो गए, ये जैसा नहीं है और ऐसा नहीं है, इतने पेज कम हो गए, इतना ज्यादा हो गए, इसमें ज्यादा हो गए, ये हो गए, वो हो गए, हैं बहुत हो हल्ला हुआ। गुरुदेव के सामने उपस्थिति में बोल रहा हूं मैं, गुरुदेव की उपस्थिति में। तो मैंने कहा कि मक्खी की जगह मक्खी मरवाना हो तो यहां दूसरे से करवा लो, हम तो ऐसा ही करेंगे। क्या हमें, आप ये बताओ कि गुरुदेव के प्रवचन जो उन्होंने बोले हैं और जो लिखे तो आपके छपे हैं, उनमें से इसमें कौन सी बात छूट गई, एक बताओ, एक आधी लाइन निकाल के। हम ऐसा अनुवाद नहीं करते कि यहां से लिखे एक लाइन देखी यहीं कहीं लिख दी, ये देखिए हम पूरा पहला पैरा पढ़ते हैं, फिर यहां उसे पूरा ध्यान में लेते हैं, फिर उसे देखे बिना उसका अर्थ लिखते हैं, तब वो असली भाषा आती है। दो भाषाओं की टोन में फर्क होती है, तो हमें हिंदी की टोन में लिखना है कि गुजराती टोन में लिखना, हम हिंदी में छापे हो गुजराती टोन में, हिंदी की टोन में जाएगा। आखिर गुरुदेव के पास गया केस, और गुरुदेव ने कह दिया सही है ठीक है, करने दो ने करने दो। तो ऐसे 11 भाग छपे हैं। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, कई दफे प्रतिमा में कहा, सबसे कहा, ये कोई तरीका नहीं है, हम रिपीटेशन नहीं हटा सकते। उन्हें 6 दफे को बात की तो 6 दफे लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, अब उन्हें कोई बोल थोड़ी रहे, उन्हें खांसी आती थी बीच में का। एक दिन मैंने सुना कि शायद गुरुदेव का टेप नहीं चला और कोई पढ़ रहा था उन्हें, मैं अभय जी की आवाज थी मैं जानता हूं, तो वो बराबर मैं नहीं कर रहे थे, लिखा भी वैसा ही है। अभी क्या कहूं, वो अच्छी बात है कि आपके पास अक्षर अक्षर पहुंच गया, आप समझिए ना। लेकिन अभी क्या करें, उसमें छह दफे वही बात आई है, फिर वही बात आई है, फिर वही बात आई है, तो लेखनी में ऐसा नहीं चल सकता हमसे। अच्छा ये काम करवाना है तो उसमें पंडित हेमचंद की क्या जरूरत है, क्यों एक शॉर्ट हैंड वाले को ले लो। अक्षर टू अक्षर ही लिखाना है तो पढ़े लिखे आदमी की जरूरत नहीं है, वो शॉर्ट हैंड वाला पढ़े लिखे में जैन दर्शन का विशेषज्ञ विद्वान की जरूरत नहीं है, उसको है। अभय जी ने बेचारों ने ये किया बहुत मेहनत करके कि वो जो 24-24 पेज के हैं मेरे ख्याल से, वो तो 24 पेज होंगे देखना, तो उन्होंने उसका एक पेज में सारांश लिखा, बहुत मेहनत करी, और उन्होंने कहा कि इसके शुरू में ऐसा अंत में कहीं ये एक पेज छाप दो, वो तो निंदो पैसे ही का पैसा क्या। तो सारांश लोगों के ख्याल में आ जाएगा, तो कहा ठीक है छाप देंगे आप तैयार करो। तो उन्होंने विद्वानों ने उनके बहुत सी गाथाएं तैयार करके इतना भेज के भेज दिया, और वहां पर रिजेक्ट हो गए, नहीं नहीं हम अपन को कुछ नहीं कहा, अपन को तो गुरुदेव ने जैसा किया वैसे ही करना है। अब कुछ वक्ता भी ऐसी नकल करने लगे गुरुदेव की खांसने की और वहां करने की करने की, तो कुछ लोगों को तो अच्छा लगता ही है जैसे अपन आज गुरुदेव का स्टेज पर नाटक करें, क्यों अरे मेरी भी नकल करें स्टेज पर बच्चे, और फिर टोपी वो भी लगा के आ जाए मेरे से ही मांग करके, और फिर मैंने कहा तो अपन ही हंसते हैं कि नहीं हंसते, अच्छा लगता है मुझे तो पता नहीं कि मैं ऐसा करता हूं, लेकिन वो सबको पता है, सब लोग तो हाथ आर आप करते हो ए? रुमाल को भी करते हैं लोग, तो रुमाल करते हैं तो उसको भी लोग हंसते हैं, तो वो मनोरंजन की चीज हो सकती है, वो एक दिन 10 मिनट का कॉमिक देखा जा सकता है ऐसा, रोजाना रोजाना नहीं चल सकता। आप रूमाल ऐसा लेके पहुंच के पंडित हुकुम से नहीं बन सकते आपको बहुत गहराई से सब पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, ख्याल में है ना। चलो कहां थे अपन, मेरा पेज पलट जाता है इसमें, बोलो पेज नंबर 203 30 है, अच्छा जी 28 आ गया। हाँ अरे यार तुम अभी 30 नहीं 29 ही में है, गुरुदेव का है ना आत्मख्याति, हाँ यहां से है। इसका अर्थ यह है, 29 भाई देखो, इसका अर्थ यह है कि दृष्टि अंतर में झुकते ही जब सभी विकल्प छूट जाते हैं तब शुद्ध आत्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। ये विकल्प हैं, मैं इनको छोड़ता हूं ऐसा विकल्प भी नहीं रहता, मात्र अंतर दृष्टि पूर्वक अनुभव ही रह जाता है। अब जो कुछ विशिष्ट बातें लिखी ना गुरुदेव की, अब इसमें क्या विशिष्ट बात है कि भैया मैं ये विकल्प छोड़ूं ऐसे विकल्प से विकल्प नहीं छूटते, क्या ऐसा कहने से एक नया विकल्प खड़ा होता है। अब मुझे आत्मा का ध्यान करना है तो शरीर पर से ध्यान हटाना है, स्त्री पर से ध्यान हटाना है, तो भैया ये हटाने की कोशिश करोगे तो वो ध्यान उस शरीर को स्त्री पर ही जाएगा, ख्याल में आई ना। ये किसे हटाना है किसे करना है समझ गए ना, ये विकल्प के निषेध की प्रक्रिया विकल्पात्मक नहीं है। तो क्या करें प्रैक्टिस उसकी, कि मैं शुद्ध बुद्ध हूं निरंजन नाका हूं शुद्ध हूं निरंजन हूं ऐसा ऐसा बोलो, अरे भाई ये तो विकल्प है, ये पहले समझ लो, समझ ध्यान ना मैं क्या कह रहा हूं, ये गुरुदेव ही यही कह रहे जो मैं कह रहा हूं, पहले आप पूरी बात समझ लो और समझ के उस निर्विकल्प जो वस्तु स्वरूप है उसमें तुम्हारे को एकदम स्पष्ट हो जाए, फिर उसके अंदर की रुचि इतनी तीव्र जागृत हो कि अब द्वारा उपयोग उस पर चला जाए डायरेक्ट, तो सब विकल्प अपने आप छूट जाएंगे। उन्हें विकल्पों को छोड़ने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये जो अवस्था है इसका नाम प्रायोग्य लब्धि है। अभी तो लोग उसका प्रायोग्य लब्धि शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं। मैंने वहां पर देवलाली में 5 लब्धियों पर प्रवचन किए थे, तो मैंने कहा कि कल अब प्रायोग्य लब्धि की चर्चा करेंगे। 3 लब्धियां हो गई तो एक बहन आई कि नहीं पंडित जी, मुझे तो आप 5 मिनट अभी बता दो, मैं आप आज जा रही हूं और कल आप प्रयोग विधि बताएंगे, तो मुझे तो आप बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रयोग विधि। अभी तक तो हम सुन रहे थे कि आप तो ये जो चलता है ना ध्यान नाम का प्रयोग लोगों को, इसके आप पक्ष में नहीं हो, लेकिन अभी आप अभी प्रयोग विधि बताएंगे तो इससे बढ़िया और क्या है। मैंने कहा बहन, प्रयोग विधि नहीं, प्रायोग्य लब्धि। वो प्रायोग्य लब्धि और प्रयोग विधि में कोई अंतर ही समझ में नहीं आया, क्या करूं मैं, बोलो। और उसे कहते आप जाते जाते 5 मिनट में समझा दो मुझे। मैं कहता हूं इतनी ज्यादा इच्छा है तो रुक जाओ 2 दिन, वहां कुछ काम वाम तो है नहीं, रिटायर्ड हो है? बच्चे तो यही कहते हैं यहां काय को पता दो, देवलाली में क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि उसमें आजादी में फर्क पड़ता है ना थोड़ा, क्यों दौड़ के जाती हो वहां? नहीं नहीं जाना तो है, जाना तो है। अरे प्रयोग विधि नहीं, प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि माने वह विशेष प्रकार की योग्यता कि जब जो तुमने विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय किया है उसकी इतनी तीव्र रुचि हो कि उसको लेकिन डायरेक्ट देखने की तीव्र भावना, तो उसमें से सहज ही सब विकल्प टूटकर निर्विकल्प अवस्था का प्रयोग हो जाएगा और उसी का नाम फिर वो कर्ण लब्धि होगा। तो कर्ण लब्धि में वो जो कर्म है वो ऐसा है, आगे को पीछे वाला साथ में आ जाएगा, पीछे वाला आगे का है ना, पर नहीं सुना कभी? अरे सुना तो होगा, तो वो सब करना पड़ेगा ना। अरे कुछ नहीं करना है, ये गिनती करना नहीं होगी, वालों को करने दो। नहीं नहीं वो पीछे वाला हमारा साथ पाले ऐसा तो ठीक नहीं है, क्यों? इसे तो अपूर्व ग्रहण अच्छा है, मैं तो अपूर्व ही ग्रहण करूंगी, मैं क्यों वाला अपूर्व ग्रहण करूंगी? प्राणवृत्ति ग्रहण तो उससे भी बढ़िया है। अरे तुझे कोई कर्ण भरण नहीं करना है, देख कर्ण भरण तो सब होते रहेंगे, ख्याल में ना तेरे को, और उनकी गिनती करने वाले गिनती करते रहेंगे, पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे और पढ़ाने वाले, तू उनके नाम भी नहीं जानेगा और तेरे को अनुभव हो जाएगा। क्यों? शेर को हो गया था तो अधापृत कर्ण से अपूर्व कर्ण में गया होगा। अरे 5 लब्धियां हुई थी तो कर्ण लब्धि हुई होगी तो गया ही होगा, उसने क्या शक है? लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। अरे जहां जाना है सिर्फ उसका पता जरूरी है। देखो मैं एक पहला पॉइंट, दूसरा यहां समस्त नए पक्ष को छोड़ने की बात चल रही है। पीछे 11वीं गाथा में जो यह कहा है, अब गुरुदेव देव कैसा आगे पीछे से मिलाते हैं, भूतार्थ के आश्रय से जीव सम्मान दृष्टि होता है, भूयत मस्त दुखण सम्मानित्थि हबई जीवो, वहां नए पक्ष के विकल्प की बात नहीं है, वहां तो भूतार्थ अर्थात शाश्वत रहने वाले शुद्ध चैतन्य स्वभाव में भगवान आत्मा को ही शुद्ध नय कहा है। कल मैंने कहा था शुद्ध नय के विकल्प को भी शुद्ध नय कहते हैं और शुद्ध नय के विषयभूत वस्तु को भी शुद्ध नय कहते हैं, है ना? भूयत तेना भी गदा जी, यही 11वीं गाथा बोलो, यही है ना 11वीं गाथा बोलो, तो उदतो देश दो शुद्ध नयो भूयत मत्स्य दो खरु सम्मादिथि हवई जीवो, भूतार्थ का आश्रय करे। तो भूतार्थ का माने विकल्प का आश्रय नहीं, शुद्ध निश्चय नय का आश्रय नहीं, शुद्ध निश्चय नय की विषय भूत जो वस्तु है परम शुद्ध निश्चय नय की, उसमें अपनापन स्थापित करे, ये मैं हूं ये जाने, नय में नहीं कि नय की विषय भूत वस्तु में, उसने नय लिखा लिखा रहे, यहां है यहां ए अर्थ है, हम बता रहे ना,
आत्मा को ही शुद्ध ने कहा है और उसके आश्रय से जो स्वानुभव प्रकट होता है उसे सम्मय दर्शन कहा है। ज्ञानी गाथा का देखो ये उनके जो वो 20-20 पेज में जिसे मैंने जो छांट छांट के रखे हैं ना वो कितने मार्मिक हैं। यहां यह कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूं ऐसे नए पक्ष को छोड़ दे। आत्मा अवध स्पष्ट है यह तो सत्य है। उस अवध स्पष्ट आत्मा को छोड़ने की बात नहीं है बल्कि मैं अवध स्पष्ट हूं ऐसा जो नए पक्ष का विकल्प है उसको छोड़ने की बात कहा जा रहा है। वस्तु में ऐसा पक्ष नहीं है ऐसा नहीं है वस्तु में ऐसा है। उस मैंने उस वस्तु को ही कहा है क्योंकि समस्त विकल्पों को छोड़ता है वही समय सार को प्राप्त करता है माने अनुभव करता है। यहां जहां यह कहा है कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में ही हैं। अब देखो वो जो आप पाठ करते हो ना ज्ञान वो फिर उसे याद कर रहे मैंने पिछली गाथा का आयन गाथा का मैंने उनके दिमाग में कैसा रहता होगा अध्ययन किसे कहते हैं इसके लिए मैं आपको ये सब सुना रहा हूं। वहां आशय यह है कि ज्ञानी को जो विकल्प आते हैं करता नहीं वह उनको मात्र जानता है उसे कोई राग द्वेष नहीं है क्यों आए नहीं आना चाहिए थे पर आ गए जान लिया नहीं आते नहीं जान लिया जो से आए वैसे जान लेते क्या है बता। जो विकल्प हैं उनका ज्ञान स्वयं से उत्पन्न होता है और ज्ञानी उस ज्ञान का कर्ता है परंतु उन विकल्प का कर्ता ज्ञानी नहीं है। आगे ना जिस जाति का विकल्प होता है उसी प्रकार की ज्ञान में सुपर प्रकाशक प्रजा स्वयं से उत्पन्न होती है। ये गुरुदेव के प्रवचन की बात है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मख्याति टीका में न केवल समस्त नयों के पक्षपात से पार होने की ही बात है पर प्रमाण संबंधी विकल्पों से विराम लेने की भी बात है। प्रमाण के विषयभूत वस्तु से नहीं नयों के विकल्पों से टीका के अंत में कहा गया है यदि ऐसा है तो नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा। ये अगले कलश की भूमिका बांध रहे वो ऐसी बात है ये भेद विज्ञान की भावना ये है तो कौन नहीं नचाएगा माने किसके हृदय में वो नहीं नाचेगी नाचेगी माने अनुभव की बात। अब अनुभव में नाचना लिख दिया तो मैं देखो तो नाचना लिखा तो नाचने लग जाओ अरे पैरों से नाचने वाला नहीं है काम उपयोग में वो त्रिकाली ध्रुव का निरंतर बने रहना उसका नाम नाचना है। ऐसा कहकर आचार्य अमृतचंद्र नए पक्ष के त्याग की भावना वाले 23 कलश रूप काव्य लिखते हैं जिनमें पहला काव्य इस प्रकार है। अजो क्या कह रहे वो कौन नहीं नचाएगा इसमें वो ध्वनि आ गई कि वो जो कलश आएंगे वो एक से आएंगे लेकिन उसमें रिपीटिशन का दोष नहीं है क्योंकि हम उस भावना को नचा रहे। क्यों अब मान लो ये कहें कि तुम नवोका मंत्र 108 दफे पढ़ते हो ना अब मैं ये कहूंगा मैं शुद्ध हूं इसे 108 दफे करो तो भाई एक सा अच्छा लगेगा कभी ये रखो ना थोड़ा कि मैं शुद्ध हूं फिर मैं निर्विकल्प हूं फिर मैं फलाना हूं एक से अच्छा लगे क्यों क्या है दिक्कत। वो शुद्ध से मतलब नहीं है शुद्ध हूं इस शब्द से जो विषयभूत वस्तु है उसमें उपयोग इस पर रखने की बात है। यानी अब मैं 23 दफे वो कहूंगा तत्ववेदी जनतो है ना तो तुम उसमें ये मत कहना आगे बढ़ो ना भावना को नचा रहे हो कहते हैं। सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में देखो कितना बढ़िया बढ़िया आता है मैं तो देखे दंग रह गया अमृतचंद्राचार्य को गुरुदेव को देख करके क्या कि वो 148 बार 156 बार लिखते हैं क्या मैं ज्ञानावरणादि रूप नहीं हूं मैं तो शुद्ध आत्मा हूं मैं दसवावरण नहीं हूं मैं तो शुद्ध आत्मा हूं मैं मति ज्ञानावरण नहीं हूं मैं शुद्ध ज्ञानावरण बराबर बराबर क्या कहना उसको भी वे क्या कहते हैं नचाना संन्यास के भावनाओं को नचाता हूं
और उसके अंदर में कलश भी इतने बढ़िया हैं कि उन कलशों को पढ़ करके बहुत अंदर आनंद आता है, वो जो सन्यासी भावना वाले। अमृतचंद ने उसमें पूरा अपना हृदय उड़ेल के रख दिया है, क्या भूत का मुझको ले 108 दफे करे लिख दो कि कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं और उनमें एक एक दफे में लगाना, क्यों कर दो, कह की जल्दी है तुम्हें कहां जाना है क्यों ये असली बात है, इसके अलग व हट के तुझे करना क्या है, बहुत टाइम लग जाएगा, क्या अपन को टाइम का क्या करना है। अब इसलिए क्या संन्यास की भावना को लिखा ना, नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा, ऐसा कहकर आचार्य अमृतचंद नए पक्ष की त्याग की भावना वाले 23 कलश काव्य लिखते हैं, जिसमें पहला काव्य इस प्रकार है। यही विमुक्ता नए पक्ष ये स्वरूप गुप्ता जो शब्द है ना, ये इनका बहुत प्रिय शब्द है। परमपर मल्हारी देव तो अपने को बहुत बहुत विशेषण लगाते हैं, और कभी कभी तो वो बहुत अटपटे लगते हैं, क्या आखिरकार गुरुदेव को प्रचनों में कहना पड़ता है कि आचार्य को ऐसा अभिमान था ऐसा मत समझना, क्या ये तो कौन भी देंद्र बता रहे हैं, परमागम का परमा मकरंद मेरे मुख से झरता है, एक देख तो ये लिखा है, क्यों घबराते हो, मैं खड़ा हूं ना भयम तिस्तामा। लेकिन अमृतचंद्र उनसे कई गुने उच्च कोटि के, उनके भावों भाषा भाव सब है, लेकिन वो अपने को कभी कोई विशेषण लगाते हैं तो वो अपना उनका नाम रखा स्वरूप गुप्त, उन्हें अपने लिए यदि कोई नाम का प्रयोग किया है तो स्वरूप गुप्त है। और वो लिखा ना सर समय सार के अंत में है कि प्रचन सार के अंत में कि स्वरूप गुप्ता अमृत चंद्र सूर्य न किंचित कर्तव्य मस्ती, मैंने ये टीका लिखने में स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का कुछ भी कार्य नहीं है, तुमने लिखी नहीं है, हमने तुम्हें लिखते हुए देखी है, देखी होगी, लेकिन वो स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र नहीं था। आप समझे ना, यानी वो अपने को सबसे बड़ी उपाधि क्या समझते हैं कि मैं अपने स्वरूप में गुप्त हूं, ये तो विकल्प के काल में लिखी गई, ये तो विकल्प वाला अमृतचंद्र था, समझे ना, स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का कुछ भी नहीं है। यही लिखा कि स्वरूप गुप्ता निरसंति नित्यम नए पक्ष पातम मुक्त्वा, स्वरूप गुप्त होकर उसमें निरंतर स्वरूप में ही निवास करते हैं, और विकल्प जाल चित्त विकल्प जालों से बिल्कुल चित्त हो गए हैं, इनका चित्त एकदम शांत हो गया है, ऐसे लोग ही साक्षात अमृत को पीते हैं, ऐसा अमृतचंद्राचार्य कहते हैं। अमृतम विमंती, जो ये करेंगे माने तब तक जो विकल्प में उलझे रहेंगे तब तक तुम अमृत का पान नहीं कर सकोगे, विशेष अर्थ अपन कल करेंगे।